जरा सोचिए कि एक बहुत ही पुराना एकदम विशाल महल है।
हाँ।
और बाहर से देखने में तो वो बेहद खूबसूरत लगता है, पर उसके दरवाजे पर ना बहुत ही अजीब और मुश्किल ताले लगे हैं।
सही कहा। और कुछ ऐसी पुरानी चाबियां या निशान जो आसानी से किसी को समझ नहीं आते।
बिल्कुल, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग उस महल की सुंदरता को बस बाहर से देखकर ही आगे बढ़ जाते हैं। यानी अंदर जाना और उन तालों को खोलना बहुत मेहनत का काम लगता है।
देखिए, ये जो आकर्षक मिसाल आपने दी ना, ये एक बहुत बड़े सच की ओर इशारा करती है। अगर हम नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट की बात करें तो लेटर टू द हीब्रूज बिल्कुल उसी बंद महल की तरह है।
हाँ, मैंने भी यही महसूस किया है। ज्यादातर पढ़ने वाले इस किताब की शुरुआत तो करते हैं, पर थोड़ा आगे बढ़ते ही इसकी भाषा
और उसके विषयों से घबराकर इसे छोड़ देते हैं।
सही बात है। और आज की हमारी इस चर्चा, इस गहन विश्लेषण का आधार डॉक्टर डेविड ए डिसिल्वा के इसी लेटर टू द हीब्रूज पर बनाए गए नोट्स हैं। हमारा मुख्य मकसद इस रहस्यमय और अक्सर अनदेखा किए जाने वाले हिस्से की परतों की उधेड़ना है। अक्सर लोग इस टेक्स्ट से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि मतलब इसमें पुराने तौर तरीकों, बलिदान के नियम और ऐसे अनुष्ठानों की बात की गई है जो आम इंसान के सर के ऊपर से निकल जाते हैं।
बिल्कुल,
पर यहाँ कुछ बहुत ही अनमोल छुपा है, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर उस महल के अंदर जाने की थोड़ी मेहनत की जाए ना, तो जो खजाना वहां मिलता है वो नए नियम की किसी और किताब में इतनी गहराई से नहीं उभरता।
अच्छा, यानी हीब्रूज बाकियों से अलग है?
बहुत अलग। देखिए, हीब्रूज सिर्फ एक पुराना धार्मिक दस्तावेज नहीं है, ये एक तरह से इस बात का मास्टर क्लास है कि जीसस के मानव रूप लेने से पहले के अस्तित्व को कैसे समझाया जाए। इसमें प्रायश्चित यानी अपने पापों के लिए एक क्षमा मांगने की थियोलॉजी को इतने विस्तार से बताया गया है
कि उस जमाने के लोगों को बहुत मदद मिली होगी।
हाँ, शुरुआती समय के विश्वासियों को अपने आधारभूत सिद्धांत बनाने में इससे सीधी मदद मिली थी। और सिर्फ सिखाने वाली बातें ही नहीं है इसमें,
और क्या है?
जैसे इसके 11वें अध्याय में विश्वास पर जो चर्चा हुई है और दुख को कैसे झेला जाए, इसका जो गहरा विश्लेषण है ना, वो आज भी किसी भी व्यक्ति के दिमाग और दिल को झकझोर सकता है।
ओ वाओ, यानी ये सिर्फ दिमाग के लिए जानकारी का भंडार नहीं बल्कि दिल और हिम्मत को मजबूत करने का एक जरिया भी है। लेकिन एक मिनट रुकिए
जी।
जब कोई दस्तावेज इतना जरूरी और इतना प्रभावशाली हो, तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही उठना चाहिए कि आखिर इस मास्टरपीस को बनाया किसने?
सही सवाल है। लेखक कौन है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है
सदियों से। तो यहाँ तक कि बहुत पुराने और प्रसिद्ध अनुवादों में भी इसका श्रेय पॉल को ही दिया गया है ना। P46 नाम की जो प्राचीन पांडुलिपि है, मेरा मतलब मैन्युस्क्रिप्ट है।
हाँ, जो लगभग साल 200 की मानी जाती है।
हाँ, वही। उसमें भी तो इसको रोमन्स के ठीक बाद रखा गया था, और इसमें टिमथी का भी जिक्र है जो पॉल के करीबी साथी थे। तो ऐसे में तो कोई भी यही मानेगा कि ये पॉल की ही लिखावट है ना।
बड़ी तस्वीर को देखा जाए तो प्राचीन काल में भी ये विषय एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा था, लेकिन इन नोट्स के अनुसार ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पॉल ने इसे नहीं लिखा।
सच में? पर सबूत क्या है इसका?
सबसे ठोस सबूत कहीं बाहर नहीं है, बल्कि खुद इस किताब के अंदर ही मौजूद है। अगर आप हीब्रूज के दूसरे अध्याय के तीसरे और चौथे वाक्य को देखें, तो लेखक खुद ये स्वीकार करता है कि उसने दूसरों के प्रचार को सुनकर ही अपना विश्वास अपनाया।
अच्छा, यानी उसको किसी और ने सिखाया और उसने उस संदेश को ग्रहण किया।
बिल्कुल।
पर एक सेकेंड, पॉल तो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि उन्हें किसी इंसान ने कुछ नहीं सिखाया।
यहीं पर तो सारी बात आकर रुकती है। गैलेशियंस और फर्स्ट कुरिंथियंस में पॉल बहुत जोर देकर, यानी यहां तक कि कसम खाकर कहते हैं कि उन्हें जो भी ज्ञान मिला है वो सीधे ईश्वर से प्राप्त हुआ है, किसी आम इंसान के जरिए नहीं।
राइट।
तो क्या पॉल अचानक से हीब्रूज जैसी इतनी जरूरी किताब में अपनी सबसे बड़ी और अनोखी पहचान को बदल देंगे?
नहीं, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि जैसे कोई बड़ा व्यापारी हो।
हाँ।
जो हमेशा मीडिया के सामने छाती ठोक कर कहता हो कि उसने अपनी पूरी दौलत अपने दम पर बनाई है बिना किसी की मदद के, और वो अचानक एक दिन एक पत्र में लिख दे कि मेरी सारी दौलत तो मुझे विरासत में मेरे परिवार से मिली थी।
हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है।
पॉल ऐसी शख्सियत थे ही नहीं जो अपनी सबसे मुख्य कहानी को इस तरह पलट दें।
सही विश्लेषण है आपका। और इसके अलावा प्राचीन विद्वान जैसे ओरिजिन और टर्टुलियन भी इस बात पर ध्यान दे चुके थे कि लिखने का अंदाज पॉल जैसा नहीं है।
तो फिर कौन हो सकता है?
टर्टुलियन का मानना था कि शायद बर्नाबास ने इसे लिखा हो।
बर्नाबास क्यों?
क्योंकि बर्नाबास एक लीवाइट थे और इस टेक्स्ट में लेविटिकल तौर तरीकों की बहुत गहरी समझ दिखाई गई है। एक दूसरा नाम अपोलोस का आता है।
अपोलोस, उनके बारे में तो सुना है कि वो काफी कुशल वक्ता थे।
हाँ, पुरानी किताबें बताती हैं कि वो भाषण देने में बहुत निपुण थे, और हाल ही के दशकों में प्रिसिला का नाम भी सामने आया है, जो पॉल की टीम की एक अहम सदस्य और उस्ताद थी।
प्रिसिला यानी एक महिला?
हाँ।
ये सुनकर लगता है कि क्या उस दौर में किसी महिला ने इतना प्रभावशाली दस्तावेज लिखा होगा, पर एक सवाल यहाँ उठता है।
बोलिए।
अगर प्रिसिला लेखक थी तो उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं दिया?
ये मुद्दा और भी पेचीदा हो जाता है जब हम व्याकरण यानी ग्रामर की तरफ देखते हैं। इस विश्लेषण में समझाया गया है कि हिब्रूस के 11वें अध्याय में
हाँ
लेखक ने खुद के बारे में बताने के लिए ग्रीक भाषा का एक पुलिंग शब्द इस्तेमाल किया है, एक मैस्कुलिन पार्टिसिपल।
ओ, तो उन्होंने मैस्कुलिन ड्रामा यूज किया है।
बिल्कुल, ग्रीक भाषा में ऐसे शब्द सीधे तौर पर जेंडर बताते हैं। एक इतना समझदार और निपुण लेखक ऐसी ग्रामेटिकल गलती तो नहीं कर सकता कि वो महिला होकर पुलिंग शब्द इस्तेमाल करें।
लेकिन एक मिनट, यहाँ मैं एक और सवाल उठाना चाहती हूँ।
पूछिए।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिसिला ने किसी स्क्राइब यानी अपने शब्द लिखने वाले किसी सहायक का इस्तेमाल किया हो? उस जमाने में बोलकर लिखवाना बहुत आम था ना?
हाँ।
अगर कोई पुरुष स्क्राइब उनके शब्द लिख रहा था तो क्या वो पुलिंग ग्रामर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था?
ये संभव तो है।
या फिर क्या प्रिसिला ने जानबूझकर किसी पुरुष के भेस में लिखा हो ताकि पढ़ने वाले और सुनने वाले उनकी बात को ज्यादा अहमियत दे?
देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और कई लोगों ने इस पर सोचा भी है, पर हिब्रूस के 13वें अध्याय का एक वाक्य इस थ्योरी को सीधे तौर पर काट देता है।
ऐसा क्या लिखा है वहाँ?
उसमें लेखक कहता है कि वो जल्द ही उन लोगों के पास वापस आना चाहता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो लोग इस दस्तावेज को पढ़ या सुन रहे थे ना,
हाँ,
वो उस लेखक को पहले से व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उनकी आपस में पुरानी मुलाकातें हो चुकी थीं और वो दोस्त थे।
अच्छा, यानी वो पर्सनली एक दूसरे को जानते थे।
सही पकड़ा आपने। जब सुनने वाले किसी को पर्सनली जानते हों, तो अचानक किसी चिट्ठी में अपना जेंडर बदलकर लिखने का,
या किसी स्क्राइब को अपनी जगह अपना जेंडर डालने देने का,
बिल्कुल, इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका नतीजा यही निकलता है कि लेखक पॉल की टीम का ही कोई अनजान परंतु बेहद पढ़ा लिखा पुरुष साथी था। सदियों पहले ओरिजिन ने भी हार मानकर यही कहा था कि असली लेखक कौन है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान जानता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लेखक भले ही अनजान हो, पर उसकी काबिलियत किसी से छुपी नहीं थी। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
कैसे?
क्योंकि अगर लेखक पॉल नहीं थे और इतने काबिल थे, तो आखिर उनके लिखने का तरीका कैसा था? आमतौर पर हम जानते हैं कि पॉल की भाषा थोड़ी सीधी होती थी, पर ऐसा लगता है कि हिब्रियस का लेखक तो शब्दों का कोई जादूगर था।
जादूगर? हाँ, आप कह सकती हैं। और इस जादूगरी का मुख्य आधार था उनका ग्रीक भाषा पर पूरा और गहरा नियंत्रण।
मतलब वो ग्रीक भाषा के एक्सपर्ट थे?
लेखक एकदम नेटिव ग्रीक स्पीकर लगता है। भाषा के स्तर पर वो कॉम्प्लेक्स और एक दूसरे पर आश्रित सेंटेंसेस बनाता था, जिसे हम हाइपोटैक्टिक सिंटैक्स कहते हैं।
इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे?
बिल्कुल, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। नए नियम की ही मार्क की किताब की भाषा बिल्कुल आम बोलचाल वाली थी। छोटे और सीधे वाक्य जो और फिर जैसे शब्दों से जुड़े होते थे,
यानी पैराटैक्टिक भाषा।
हाँ, सही कहा। मार्क शायद लिखते वो वहां गए और उन्होंने देखा और फिर लोग आए, ऐसा ही ना?
हाँ, सीधा सा।
पर हिब्रूस का लेखक शुरुआत ही ऐसे करता है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ईश्वर, जिसने पुराने समय में कई बार और कई तरीकों से हमारे पूर्वजों से बात की थी, इस आखिरी समय में अपने पुत्र के द्वारा बोला है।
ओ वाओ, ये तो एक काफी लंबा और आपस में गुंधा हुआ वाक्य है,
है ना? ये दिखाता है कि लेखक उच्च स्तर का साहित्य रच रहा था।
यानी ये किसी आम भाषण जैसा नहीं था, इसकी पूरी बनावट बहुत ध्यान से सोची समझी गई थी।
सही कहा। और ये बनावट सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी। इन नोट्स में ग्रीको रोमन शिक्षा प्रणाली के एक खास हिस्से का जिक्र है, जिसे उस वक्त प्रो जिम्नास्ट माता कहते थे।
ये क्या होता है?
ये भाषण कला यानी रिटोरिक सिखाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका माना जाता था। स्कूल में सिखाया जाता था कि किसी आर्ग्यूमेंट को ध्यान से कैसे बिल्ड करना है, और हिब्रूस के 12वें अध्याय में इसका एक बिल्कुल परफेक्ट ढांचा मिलता है। वहां 5 कदमों में बात को समझाया गया है।
5 कदम? ये कौन कौन से कदम है, इसको थोड़ा और विस्तार से बताइए।
पहले तो एक मुख्य विषय यानी थीसिस आती है।
अच्छा।
जिसमें लेखक कहता है कि अनुशासन यानी कठिनाइयों से घबराओ मत। फिर दूसरे कदम में उसका कारण यानी रैशनल दिया जाता है।
रैशनल मतलब उसका लॉजिकली कारण बताना।
हाँ, कि ईश्वर जिससे प्रेम करता है उसे अनुशासन सिखाता है।
ठीक है।
तीसरे कदम में एक कॉन्ट्ररी आर्ग्यूमेंट यानी एक उल्टा तर्क रखा जाता है कि अगर तुम्हें अनुशासन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब तुम नाजायज औलाद हो।
बाप रे, ये थोड़ा कड़क था।
था ना। फिर चौथे कदम में वो एक उदाहरण या एनालॉजी जोड़ते हैं।
उदाहरण कैसा?
कि जब हमारे इस दुनिया के पिता हमें डांटे थे तो हम उनका आदर करते थे, तो स्वर्ग के पिता का क्यों नहीं करें।
बहुत ही लॉजिकली बात आगे बढ़ रही है।
और आखिरी पांचवें कदम में एक सटीक निष्कर्ष निकलता है कि अनुशासन उस वक्त दुख देता है पर बाद में एक सही जीवन का फल देता है। ये एकदम स्कूल की टेक्स्ट बुक में दिए गए किसी फॉर्मूला जैसा है।
ये तो आधुनिक समय के किसी लॉ स्कूल की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट जैसा लग रहा है मुझे।
बिल्कुल।
यानी एक वकील जूरी के सामने खड़ा है और उसने अपना हर एक पॉइंट इतने ध्यान से डिजाइन किया है ताकि सुनने वाले के दिमाग और दिल दोनों पर एक साथ असर पड़े। या फिर देखिए ना, किसी परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड टेड टॉक की तरह।
टेड टॉक वाला कंपैरिजन एकदम सटीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये चुपचाप पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए बनाया गया था।
पढ़ने के लिए नहीं?
नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है कि हिब्रूज असल में किसी पत्र या लेटर की तरह शुरू ही नहीं होता।
अच्छा, जैसे प्रिय मित्र, आशा है तुम कुशल हो जैसी कोई ग्रीटिंग्स नहीं है इसमें।
एकदम नहीं, बल्कि इसके शुरुआती 12 शब्दों में ग्रीक भाषा में 5 बार पी साउंड की आवाज आती है। एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा शब्दों के अंत में एक जैसी आवाज आने वाले तरीके जिसे होमोटियोल्यूटॉन कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल हुआ है।
राइम्स। तो मकसद ये था कि जब कोई से चर्च में भीड़ के सामने जोर से पढ़े तो उसकी आवाज का एक रिदम बने जो लोगों को कानों में एक संगीत की तरह गूंजे और अपने आकर्षण में बांध ले।
सही पकड़ा आपने, ये आवाज के लिए लिखा गया था।
पर देखिए, अगर लेखक की भाषण कला इतनी प्रभावशाली थी और वो ग्रीक भाषा का इतना बड़ा माहिर था, तो जाहिर सी बात है कि उसने पुराने धर्म ग्रंथों, मेरा मतलब है ओल्ड टेस्टमेंट, उसको भी तो ग्रीक अनुवाद में ही पढ़ा होगा ना, ना कि ओरिजिनल हिब्रू में।
बिल्कुल, उसने सेप्टुजेंट का इस्तेमाल किया था जो ग्रीक ओल्ड टेस्टमेंट है।
तो यहाँ से तो एक नया पहलू खुलता है। हम सब जानते हैं कि ट्रांसलेशन में अक्सर कुछ ना कुछ बदल जाता है। तो क्या उन बदलावों का इस टेक्स्ट पर असर पड़ा?
असर? देखिए, एक अनुवाद में होने वाला बदलाव आमतौर पे एक गलती मानी जाती है, लेकिन इस लेखक ने इन्हीं अनुवाद की बारीकियों का, उन न्यूएंसेस का बहुत ही कुशल फायदा उठाया। इसके दो उदाहरणों का बहुत गहन विश्लेषण किया गया है जो सच में दिमाग को हिला देते हैं।
मुझे उदाहरणों से समझना बहुत पसंद है, बताइए।
पहला उदाहरण एक पुराने भजन यानी साम 8 का है। ओरिजिनल हिब्रू भाषा में टेक्स्ट कहता था कि भगवान ने इंसान को फरिश्तों से थोड़ा नीचे बनाया है।
ठीक है।
वहाँ हिब्रू में इस नीचे का मतलब रुतबे यानी स्टेटस में छोटा होना था।
हाँ, फरिश्तों से रुतबे में थोड़ा छोटा, ये तो समझ आता है।
लेकिन जब इसका ग्रीक में अनुवाद हुआ ना, तो जिस ग्रीक शब्द का इस्तेमाल हुआ उसमें एक एम्बिग्युटी थी। उसका मतलब रुतबा तो हो ही सकता था, पर उसका मतलब कुछ समय के लिए भी हो सकता था, यानी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में।
ओ, रुतबे की जगह समय।
हाँ? और हिब्रूज के लेखक ने इस छोटी सी बारीक एम्बिग्युटी को पकड़ लिया। उसने इस वर्स को इंसानों से हटाकर सीधा जीसस पर लगाया और समझाया कि जीसस जब धरती पर आए तो वो फरिश्तों से कुछ समय के लिए नीचे हुए।
क्या बात है, एक अनुवाद के फर्क ने अचानक से एक बिल्कुल नई थियोलॉजिकल दिशा दे दी।
और दूसरा उदाहरण तो और भी ज्यादा गहरा है।
अच्छा।
एक और भजन साम 40 की ओरिजिनल हिब्रू वर्स थी कानों को तुमने खोदा है।
कानों को खोदा है, सुनने में ये मुहावरा थोड़ा अजीब तो लगता
है ना। इसका अर्थ सृष्टि के उस समय से था जब भगवान ने मिट्टी से इंसान को आकार दिया, यानी भगवान ने कानों का निर्माण किया ताकि इंसान ईश्वर की बात सुन सके और आज्ञाकारी बन सके।
ठीक है, मेटाफोर समझ आई।
पर ग्रीक अनुवादक को भी ये मुहावरा अपनी भाषा और समाज में अजीब ही लगा होगा। ग्रीक लोग पूरे शरीर को आज्ञा पालन का जरिया मानते थे, सिर्फ कानों को नहीं। इसलिए उसने अनुवाद बदलकर लिख दिया, तुमने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है।
ओ, कान की जगह पूरा शरीर।
अब ध्यान से सुनिए, हिब्रूज के लेखक ने इस अनुवाद की इस छोटी सी गलती या बदलाव को देखा और इस शरीर शब्द का इस्तेमाल जीसस के मनुष्य रूप में धरती पर आने की घटना को समझाने के लिए पूरी तरह से कर लिया। यानी एक शरीर जो भगवान ने तैयार किया ताकि बलिदान दिया जा सके।
रुकिए रुकिए, तो आपका कहना है कि एक बिल्कुल अनजाने अनुवादक की गलती ने या उसके एक छोटे से बदलाव ने शुरुआती ईसाइयों को वो पूरा सांचा दे दिया जिसे वो ईश्वर के मानव रूप लेने जैसी इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट को समझा सके।
बिल्कुल,
ये बात सच में दिमाग घुमाने वाली है। इसकी तुलना तो मैं एक डब्ड की गई मूवी से करूंगी, जैसे एक भाषा का मुहावरा दूसरी भाषा में ट्रांसलेट होकर अपना ओरिजिनल मतलब भले खो दे लेकिन एक बिल्कुल नया और भी बेहतरीन मतलब बना दे जो उस नई कहानी में फिट बैठता हो।
वाह, क्या बात है।
लेखक ने तो एक अनुवाद की गलती को एक थियोलॉजिकल खजाने में बदल दिया।
और इसी खोज से हमें उस लेखक के दिमाग और उसके इर्द गिर्द के माहौल को समझने में मदद मिलती है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था जो पुरानी किताबें पढ़ रहा था, वो एक हेलेनिस्टिक ज्यूइश क्रिश्चियन था, यानी एक ऐसे समाज का हिस्सा जहां ग्रीक सोच और यहूदी विश्वास आपस में मिल रहे थे।
यानी सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं थे।
एकदम, जब कोई ग्रीक भाषा में बोलता और सोचता है तो वो अपने आसपास के ग्रेको रोमन समाज और उनके दर्शन यानी फिलॉसफी से भी प्रभावित होता है।
यहाँ मेरे जहन में एक और उलझन है।
बताइए।
उस जमाने का जो सेक्युलर कल्चर था, उनकी फिलॉसफी, यहाँ तक कि उनकी खेलकूद, वो सब इन पवित्र टेक्स्ट के अंदर कैसे घुस गए? आमतौर पे तो धार्मिक चर्चाओं को इन सबसे अलग रखा जाता है ना।
देखिए, अगर किसी को अपना संदेश एक आम भीड़ तक पहुंचाना है तो उनके रोजमर्रा की जिंदगी और उनके कल्चरल रेफरेंस पॉइंट्स को इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इस विश्लेषण में इसके बहुत खूबसूरत उदाहरण दिए गए हैं।
जैसे
लेखक एक जगह कहता है चैप्टर 5 में कि उसने सहकर आज्ञाकारी बनना सीखा। ग्रीक भाषा में सीखा यानी एमथेन और सहा यानी एपथेन शब्दों का एक खेल था। यह एक बहुत ही मशहूर मुहावरा था जो एस्किलस और हेरोडोटस जैसे प्राचीन ग्रीक लेखकों की किताबों में मिलता था।
ओह, यानी उसने पुराने ग्रीक साहित्य का एक पॉपुलर मुहावरा उठाकर सीधा सीधा अपने मुख्य किरदार के दुख पर लगा दिया। ये तो तभी हो सकता है जब उसको यकीन हो कि पढ़ने वाले उस मुहावरे को पहचानते हैं।
बिल्कुल, और उसने बात सिर्फ भाषा तक नहीं रखी बल्कि फिलॉसफी तक भी ले गया। सेनेका नाम के रोमन दार्शनिक ने सोक्रेटिस के बारे में लिखा था कि सोक्रेटिस मौत के डर से आजाद थे।
हाँ, ये काफी फेमस बात है।
उन्होंने मौत का सामना निडर होकर किया और दूसरों को सिखाया कि मौत से डरना नहीं चाहिए। हीब्रूस का लेखक चैप्टर 2 में ठीक इसी सोच का फायदा उठाता है।
किस तरह से?
वो जीसस को पेश करते हुए कहता है कि जीसस ने मौत और शैतान से लड़कर लोगों को मौत के डर से आजाद किया है। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो उस जमाने के किसी भी व्यक्ति के दिमाग में तुरंत उतर जाती।
तो वो सोक्रेटिस की उस महान इमेज को लेकर उससे भी बड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि सोक्रेटिस भले ही महान थे क्योंकि वो मौत से डरे नहीं, पर यहां एक ऐसी शख्सियत है जिसने मौत को ही हरा दिया है।
एकदम सही। इसके अलावा एक और मशहूर दार्शनिक थे इपिक्टेटस। उनकी तरह लेखक ज्ञान के स्तर को समझाने के लिए दूध और ठोस आहार यानी सॉलिड फूड का उदाहरण का इस्तेमाल करता है।
अच्छा, ये दूध और ठोस आहार वाला कंपैरिजन कहां से आया?
वो लोगों को डांटता है कि तुम्हें अब तक दूसरों को सिखाने वाला बन जाना चाहिए था, पर तुम अभी भी दूध पीने वाले बच्चों की तरह हो जिन्हें ठोस बातें हजम नहीं होती। इपिक्टेटस ने भी ठीक यही ढंग इस्तेमाल किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए।
ये तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की याद दिला रहा है जो परेशान हो जाए कि उसके आखिरी साल के छात्र अभी भी बच्चों वाले बेसिक फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सब के बीच मैं उस स्टेडियम वाले उदाहरण के बारे में भी जानना चाहती हूँ।
हाँ, स्टेडियम वो एक और बेहद शानदार तरीका है उस जमाने की आम जिंदगी को शामिल करने का। चैप्टर 12 में लेखक एथलेटिक्स और स्टेडियम के मेटाफोर्स का इस्तेमाल करता है।
कैसी मेटाफोर्स?
वो दौड़ने की बात करता है। वो कहता है कि दर्शकों की एक भीड़ हमें देख रही है, इसलिए हमें उस दौड़ को धीरज के साथ लगातार दौड़ना चाहिए और पाप के खिलाफ एक कुश्ती के मैच की तरह लड़ना चाहिए। एक प्राचीन ग्रीक शहर में स्टेडियम और वहां होने वाले एथलेटिक्स की अहमियत बहुत ज्यादा थी।
यानी लेखक ने इन्हीं छोटी छोटी आम तस्वीरों को अपने भाषण में शामिल करके उस भारी विषय को बिल्कुल जिंदा कर दिया।
तो इसका आखिर क्या मतलब निकलता है,
आप बताइए?
अगर मैं इन सबको एक साथ जोड़कर देखूं तो ये बात साफ नजर आती है कि लेखक ने अपने सुनने वालों के रोज की दिनचर्या, उनके स्पोर्ट्स, उनकी फिलॉसफी और उनके रोजमर्रा के मुहावरों का सहारा लिया ताकि एक अनजान सी बात को उनके दिल के करीब लाया जा सके।
और यही हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ है। हिब्रूस का लेखक भले ही इतिहास के पन्नों में अनजान रह गया हो, पर वो एक बेजोड़ मास्टर ऑरेटर यानी कुशल वक्ता था।
सही बात है।
उसके पास थियोलॉजी, ग्रीक ग्रामर और ग्रेको रोमन कल्चर को एक साथ पिरोने की एक हैरतअंगेज काबिलियत थी। उसने एक ऐसी भाषा बनाई जिससे उस सदी के लोग जुड़ सकें।
उस महल के ताले उसने इतनी कुशल चाबियों से खोले कि लोग अंदर जा सकें। और इसी मोड़ पर हम दोनों को लगता है कि सुनने वालों के लिए ये सोचना सच में बड़ा दिलचस्प होगा कि
हाँ बताइए
कि अगर ये प्राचीन लेखक इतना समझदार था कि उसने फर्स्ट सेंचुरी के लोगों को समझाने के लिए स्टेडियम के खेल और सोक्रेटिस की फिलॉसफी का इस्तेमाल किया, तो सोचिए अगर वो आज के दौर में लिख रहा होता तो क्या करता।
ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है।
क्या आज के लोगों को समझाने के लिए वो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स, वर्चुअल रियलिटी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मेटाफर्स का इस्तेमाल करता? उस पुराने महल का दरवाजा खोलने के लिए आज की भाषण कला क्या एक ट्वीट या वायरल वीडियो का रूप ले चुकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसपे सच में विचार किया जा सकता है।